ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ, ਸਰਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ, ਸਤਿਸੰਗਤ, ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭਗਤੀ ਭਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਸਭੀ ਆਪ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨ ਘੜੀਆਂ ਔਰ ਪਲੋਂ ਕੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ 48ਵੇਂ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਕੀ ਤਾਰੀਖੇ ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਮੈਂ ਸੜਕੋਂ ਪਰ, ਗਲੀਓ ਮੈਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਪਰ, ਪੋਸਟਰਸ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਵੋ ਵਿਧੀਵਤ 3 ਤਾਰੀਖੇ ਹੀ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਉਸਸੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਾ ਮਾਨਵਤਾ ਕਾ ਪੈਗਾਮ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਨੇਕੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਉਥਾਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਕਾਮ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਅੰਧਕਾਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਗਿਆਨ ਉਜਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਯੇ ਉੱਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇ। ਅਨੇਕੋ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਅਨੇਕੋ ਮੁਲਕੋਂ ਕੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨੋਂ ਸੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ। ਯੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਮੜਤਾ ਹੁਆ ਸਾਗਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਐਸੀ ਤਰੰਗੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਹਮੇਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕੀ ਧੜਕਨੋਂ ਸੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕੀ ਧੜਕਨੇ ਜੋ ਤਾਰੋਂ ਕੋ ਝਨਕਾਰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਝਨਕਾਰ ਮੇਂ ਸੇ ਸਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਾ ਗੂੰਜਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਾ ਗੂੰਜਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਯੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾਚਨੇ ਲੱਗ ਪੜਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਨਾਚਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਂ ਇਸ ਲੀਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਭੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ, ਜਵਾਨ ਕਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਆ, ਬਹਿਨੇ ਕਿਆ, ਭਾਈ ਕਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਆ, ਸਭੀ ਕੇ ਕਦਮ ਅਗਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਥੇ, ਅਗਰ ਯੇ ਨਾਚਨਾ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਏਕ ਹੀ ਕਿ ਨੱਚਾਂਗੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਚ ਕਰ ਗਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਝਰੋਕੇ ਸੇ ਅਭੀ ਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮੇਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮੇਂ, ਔਰ ਸਮਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਚ ਕਰ ਗਾ ਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੇ ਮੰਗੀ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੀਏ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੇ ਭਗਤੀ ਕਾ ਦਾਨ ਭਰਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਵੀ ਯੇ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੇ ਭਗਤੀ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਤੇ ਹੋਏ ਸਭੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭਾਯਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਪਰੋਪਕਾਰ ਮੇਂ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰੋਂ ਮੇਂ, ਇਹ ਤੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਵੋ ਜੀਵਨ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯਹੀ ਇੱਕ ਭੀਨੀ ਭੀਨੀ ਯਾਦ ਕੀ ਮਹਿਕ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਪਰ ਸਮਾਈ ਰਹੀ, और यहाँ मुंबई में भी, महाराष्ट्र में, जब से पहले दिन 23 तारीख को जब ये पास के इलाके की सड़कों से गुज़रता हुआ ये मानवता का एक सैलाब, जो कि अनेकों अनेकों रूपों में मिशन की आवाज़ भी दे रहा था और साथ ही साथ मानवता का संदेश दे रहा था और प्रेम के तराने गा रहे थे, और इस तरह से नाना रूपों में राजमाता जी की याद भी साथ साथ वो भी सामने प्रदर्शित हो रही थी। और फिर समागम के पहले दिन भी सत्संग का भरपूर आनंद लिया गया, और फिर अगले ही दिन 24 तारीख को सुबह सेवा दल के नौजवानों ने किस कदर रैली के रूप में सेवा के महत्व को उजागर किया कि जहाँ पर सत्संग का महत्व है हमारे जीवन में, वहाँ पर सेवा का भी बहुत महत्व है। और ये सेवा दल के नौजवान वर्दियाँ पहनकर किस तरह से दिन रात तन्मयता के साथ, लगन के साथ, निष्काम भाव से ये सुंदर देन ये दिए चले जा रहे हैं, जहाँ सात संगत की टहल और सेवा कमा रहे हैं, वहाँ पर समाज की, देश की सेवा में भी तल्लीन है। और फिर शाम को हमने फिर से सत्संग का भरपूर आनंद लिया, जहाँ अभंग हमने श्रवण किए, संत तुकाराम जी की वाणी श्रवण की, नामदेव जी की वाणी श्रवण की, समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी श्रवण की, मुक्ताबाई की वाणी श्रवण की, कबीर के दोहे गुंजित हुए, इसी प्रकार से बुल्ले शाह जी के श्लोक वो भी हमारे कानों तक पहुँचे। इस प्रकार से अनेकों अनेकों भाषाओं में हमने इस निराकार की महिमा श्रवण की। और फिर कल यानी कि 25 तारीख को शाम को फिर भरपूर आनंदमय वातावरण इसी पंडाल में बना, जहां पर बहुत ही यथार्थ कल्याणकारी वचन हमें श्रवण करने को मिले। और फिर आज सुबह इसी पंडाल में सामूहिक विवाह, जहां पर 141 जोड़ों ने गृहस्थ के मार्ग पर कदम रखा, जो जिसको मैस मैरिजेस हम कहते हैं। तो इस तरह से एक मुंबई का अपने आप में एक ऐसा वजूद बना हुआ है, एक अपनी एक अलग सी पहचान बनी हुई है, जिसमें अभी ये नाचने गाने का जो सवाल आया, जो ये कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित ये कला का सहारा लेकर जहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए जा रहे थे, वहाँ पर साथ ही साथ कुछ झिंझोड़ा जा रहा था, संदेश दिया जा रहा था। तो इसके लिए भी मुंबई से ही ऋषि व्यास देव जी ने ये सिलसिला आरंभ किया, और किस तरह से बाबा गुरुवचन सिंह जी ने फिर परवानगी दी, इसी को दिल्ली में भी अपनाया गया, और यहाँ मुंबई में माता कांता जी ऋषि व्यास देव जी के साथ, चाहे दिल्ली समागम हो या यहाँ का समागम हो, उस उम्र में जब पूरी तरह से जौवन में इसी तरह से नाच कर गा कर साथ संगत को खुशियाँ प्रदान करते रहे। और आज भी कांता माता जी को आपने देखा, जिनको यहाँ मुंबई की जिम्मेदारी दी गई है, इस उम्र में भी, इस उम्र के इस पड़ाव में आकर भी वही जज्बा प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने भी हमेशा जो बाबा गुरुवचन सिंह जी, शहनशाह जी से राजमाता जी का संग कर करके जो ताकत और शक्ति प्राप्त की, उसी तरह से उसी जज्बे को कायम रखते हुए आज भी उसी रंग में रंगे हुए। तो मुंबई को ये जो एक ऐसा महत्व ये प्राप्त है, जहाँ पर उत्साह भी हैं, अनेकों अनेकों स्थानों पे सत्संग चलते चले जा रहे हैं, अनेकों सामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं, अनेकों इवेंट समय समय पर ऑर्गेनाइज होती हैं जो मिशन के द्वारा, तो उसमें भी यहाँ ये योगदान दिए जा रहे हैं। और अभी ये घड़ियाँ, ये पल, ये क्षण, ये जो बिताए जा रहे हैं, ये वास्तविकता में उसी एक रंग में रंगे हुए भक्तजन इन घड़ियों का खुशी मना रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि दातार कृपा कर, ऐसी दया कर कि फिर भी मिलाई रखें संतां दी टोली विच। इस प्रकार से जो राजमाता जी ने ये एक यही सबको उनका ध्यान इस ओर अग्रसर किया कि चाहे दुनिया में हम कितने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं, चाहे हम कितने भी शौहरत के पात्र बन जाएं, लेकिन ये ना कभी भूलें कि ये साध संगत का सत्कार हमने करते चले जाना है, ये साध संगत से अपना दामन हमने छुड़ाना नहीं है। इस तरह से हमने इस साध संगत के एक चरणरज बनकर एक भंवरे के समान हमने इससे दूर नहीं होना है। हमेशा ही ये दाते मुबारक हैं, ये प्राप्त हों हर किसी को। ये भी उन्होंने कितनों को वरदान भी दिए और प्रार्थनाएं भी की कि हर घर में सुख हो, हर घर में शांति हो, हर तरफ एक मेल जोल हो, एक दूसरे का सम्मान हो और तमाम कर्तव्यों की पालना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वंदना के अवसर पर भी कलाकारों ने कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। दिल्ली में भी आपने प्रस्तुतिकरण देखा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक सुंदर ढंग से ये नौजवानों ने ये कला को प्रस्तुत किया, जिसमें सबको आनंदित किया और साथ ही साथ वो भावनाएं भी जो हृदय में, वो भी किस तरह से आँखों के द्वारा भी छलकी, उन भीनी भीनी यादों को फिर से ताज़ा करके। और ये तो हमेशा ताज़ा ही रहेंगी, ये यादें कभी धूमिल होने वाली नहीं हैं। जो योगदान दिए गए हैं ये हमेशा ही हमारे जहन, हमारे दिलो दिमाग में ये बसी रहेंगी। इस प्रकार से एक ऐसी ही शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना कि रोशनी के अंतर्गत सभी जीवन जिएं। जो ये रोशनी प्राप्त हुई है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो यूएनओ ने हर बरस दे एवरी ईयर डिक्लेयर सम एस्पेक्ट विच हैज़ टू गेट इम्पोर्टेंस फॉर दैट ईयर, और उसका ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने जो इस साल जो अनाउंस किया, एक लाइट रिलेटेड लाइक लेज़र एक्सेट्रा, तो उस एस्पेक्ट को उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया। जैसे आप जानते हैं कि लाइट इंडस्ट्री में भी किस तरह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी कितनी एवोल्यूशंस हो रही हैं, और अभी कितना जिक्र हो रहा है, पहले और किस्म के बल्ब इत्यादि जो ज़्यादा वोल्टेज फूंकते थे, फिर और उसमें बेहतरी आई, और अभी LED का सिलसिला शुरू हो गया, और ज़्यादा उसमें एक पावर कंजम्पशन की कमी इत्यादि। तो इस प्रकार से उन्होंने लाइट की तरफ ध्यान दिलाया। और एक और उन्होंने अनाउंस किया है साथ ही रिलेटेड इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, और वो है सॉइल। जो हम जानते हैं कि जो धरती के ऊपर सॉइल होती है, और इसी के कारण इसके ऊपर हम अनाज इत्यादि पैदा करते हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट, चाहे वो किसी भाव से उन्होंने अनाउंस किए हों, लेकिन हम तो वो हर चीज़ को परमार्थ के ऊपर ही, उसको एक उस संदर्भ में ही सोचते हैं कि अगर लाइट का जिक्र कर रहे हैं तो फिर हमने भी ये रोशनी ज्ञान की प्रज्वलित करनी है, आध्यात्मिकता वाली रोशनी, हमने हमेशा इसको फैलाव देते चले जाना है। और सॉइल की बात रही कि अगर सॉइल ठीक होता है तो फिर हम जानते हैं कि उसके ऊपर पैदावार भी अच्छी हमें प्राप्त हो जाती है। किसान जो खेत तैयार करते हैं और उसमें सॉइल को देखा जाता है और उसमें से फिर उपज ली जाती है, तो इसी प्रकार से ये भी एक कोई पैदावार होती है तो उसमें से भरपूर दाने प्राप्त हों किसान को, तो वो सॉइल भी मजबूत रखता है, लेकिन साथ ही साथ वो जब उसमें बीज बोता है तो साथ ही साथ वो कोई पौधे का रूप बन रहा होता है, पनप रहा होता है, तो वो साथ ही साथ उसकी एक गुड़ाई करता चला जाता है और उसमें से खरपतवार निकालता चला जाता है। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं, अगर वो उसी तरह से रेगुलर क्रॉप में एग्जिस्ट करते रहें तो वो जो खाद के रूप में, मैन्योर्स के रूप में जो फसल के लिए वो डाले जाते हैं ताकि फसल मजबूत हो, हर एक सिट्टे के ऊपर ज़्यादा दाने प्राप्त हों, इसलिए वो मैन्योर्स का सहारा लिया जाता है। लेकिन अगर वो खरपतवार फिर भी एग्जिस्ट करती रहे तो मैन्योर तो डाल दी, लेकिन वो सारी शक्ति जो क्रॉप को मिलनी थी उसमें से कितनी वो खरपतवार उस ताकत को खींच के ले गए और असल फसल कमज़ोर रह गई। तो इसलिए वो खरपतवार को निकालते चले जाते हैं ताकि फसल मजबूत रहे। इसी प्रकार से भक्त भी सुचेत रहता है कि अगर कहीं पर ये अहम, ये लोभ, ये लालच, ये संकीर्णता रूपी खरपतवार मेरी असल फसल को तो नष्ट नहीं कर रहे, कहीं इसको तो कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, ये मजबूत रहे, भरपूर दाने घर में आए। इसलिए ये किसान की तरह ये मेहनत करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, बीजारोपण करते हैं, खाद देते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, सेवा के रूप में, सत्संग के रूप में, परोपकार के रूप में, सुमरण के रूप में, अनेकों अनेकों रूपों में ये फसल तैयार करते हैं और यही चाहते हैं कि इस फसल के दाने दुनिया में बसने वाले हर इंसान तक पहुँचें, ताकि हर इंसान के जीवन में क्रांति घटित हो, हर इंसान का म्यार ऊंचा हो, हर इंसान एक सुंदर भावनाओं से युक्त होकर, एक पॉजिटिविटी के साथ युक्त होकर, हमेशा ही एक दिव्य गुणों से युक्त होकर इस संसार को सजाता और संवारता ये चला जाए। ऐसी ही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास की जाती है कि दातार कृपा करे, जो पिछले 3 दिनों में ये मानवता इंसानियत का जो एक बयान दिया गया, तो उसी संदर्भ में कि अब जब ये कंक्लूडिंग सेशन चल रहा है, ये जो समागम का ये 4th दिन, तो इसमें फिर से वही पैगाम हमें जहन में आ रहे हैं जिसके लिए मिशन दिन रात कार्य कर रहा है, कि इस तरह से ये मानवता इंसानियत ये स्थापित होती जाए, ये मानव का बिगड़ा हुआ रूप ये समरता चला जाए। वो जहन में आती है बात, एक कहावत बहुत मशहूर है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कि हे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी है, सब कुछ टेढ़ा ही है, ऊपर हंप निकला हुआ है। तो ध्यान में बात आई कि ऊँट को तो हम सवाल कर रहे हैं कि तेरी कौन सी कल सीधी, कि उसकी कोई भी कल अगर सीधी नहीं भी है लेकिन फिर भी कितना उपयोगी है, लेकिन ये सीधा नज़र आने वाला इंसान ये कितना टेढ़ा है, ये टेढ़ेपन से भरा पड़ा है, तो वो टेढ़ा होकर भी कितना उपयोगी है। और यहाँ पर इंसान सुंदर भी नज़र आता है, रिष्ट पुष्ट भी नज़र आता है, बहुत सामर्थ्यों का मालिक भी नज़र आता है, बड़े कीमती से कीमती वस्त्र भी पहनता है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में वो नहीं है, वहाँ पर टेढ़ापन ही है, चाल भी टेढ़ी है, सोच भी टेढ़ी है, ख्याल भी टेढ़े हैं। तो इस तरह से यही मानवता का, ये मानव का टेढ़ापन समाप्त हो और सभी इस कदर एक सीधी चाल चलते चले जाएं, एक सुंदर असल में रूप धारण करते चले जाएं, और विश्व का वातावरण ये सुखद ये होता चला जाए। ऐसी ही एक अरदास, यही प्रार्थना, इस शुभकामना के साथ दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि सबका आधार ये मालिक है, इसी तरह से इसको आधार बनाए रखें। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, इस निराकार का आधार लेते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, इसी को हृदय में बसाए रखें, रोम रोम इसी से रचा हुआ हो, इसके एहसास में ये प्यार रोम रोम में रचा हो, रोम रोम से प्यार छलकता हुआ ही ये एक नज़र आता चला जाए, कहीं पर भी गुंजाइश ना रहे नफ़रत की, वैर की, जलन की, ईर्ष्या की, अहम की, ये गुंजाइश ना रहे। और इस प्रकार से इस मालिक का एहसास करते हुए, जैसे कलाकारों ने कितने स्टेट्स के भिन्न भिन्न नाट्य कला, भिन्न भिन्न जो शैलियां हैं नाट्य की, उसके द्वारा जहां पर वो नाट्य पेश किया, वहाँ पर सुमिरन, हर उस शैली के साथ जुड़ा हुआ सुमिरन, के इस सुमिरन निराकार दातार का, के उठता बसता प्रभु चे ध्यान, के उठते बैठते निराकार का ध्यान बना रहे, इसका एहसास बना रहे, इसका सुमिरन होता चला जाए, कि तू ही नंकार करो ते हर पल इस नू याद करो, इस अमृत नू रज रज पियो तन सौखा दिल शाद करो, कि तू ही नंकार हर पल इसकी याद ये हमेशा बना रहे, ध्यान करू जात मन माझा हर पले। तो इस प्रकार से ये ध्यान इस मालिक का हमेशा करते चले जाएं, और ये भी हमेशा केवल ज़ुबान पे ना रहे, इसका नाम एहसास में रहे, और इसके एहसास में ही हम जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। और जैसे भक्त हमेशा इस मालिक को विशेषता देते हैं, जैसे कल भी ज़िक्र हुआ, परसों भी ज़िक्र हुआ, उससे पहले दिन भी ज़िक्र हुआ, और हमेशा होता है, अंत में वही पंक्ति कहकर दास आपसे इजाज़त चाहेगा, जो शायर की एक और पंक्ति जहन में आती है कि तुम जिस तरह से मेरे हो बस तुम ही उस तरह से मेरे हो, कि इस प्रकार से कि जिस तरह से तुम मेरे हो बस तुम ही उस तरह से मेरे हो, यानी कि हे मालिक तेरे तुल्य मैं किसी और को वो स्थान देने वाला नहीं है हूँ, जो मेरे जीवन में, मेरे जहन में, मेरी दृष्टि में जो तेरा स्थान है वो बस तुम ही उस तरह से मेरे हो, और कोई वो जगह ले नहीं सकता है। तो इस तरह के भाव, इस तरह के जज्बे, इस तरह की एक भावनाएं ये भक्तों के हृदय में होती हैं, और यही भावनाएं कायम रहें, बरकरार रहें, और साथ ही साथ गुरमत के रास्ते पे चलते चले जाएं, प्यार प्रीत निम्रता मिठास इस तरह से ज़ुबान पे भी हो, निम्रता भी हो, दास भावना भी हो, विशालता भी हो, सहनशीलता भी हो, सबर संतोष भी हो, इन तमाम गुणों से पूरी तरह से युक्त रहें जो गुरसिक की पहचान बनते हैं, और इस तरह से इस वातावरण को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। और ये महाराष्ट्र का 48वां संत समागम विधिवत रूप में अभी ये 4 दिन संपन्न होने जा रहे हैं, इसी के साथ अनेकों अनेकों महापुरुष तो कल भी और आज सुबह यहाँ से रवाना हो गए, और अभी अनेकों अनेकों यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये सुंदर नज़ारे देखे हैं, तो वो भी अभी सहजे सहजे सभी अपने अपने स्थानों की तरफ लौटेंगे। तो यही अरदास करेगा दातार कि कृपा करें कि आप सभी लौटकर अपने अपने स्थानों पर यही सत्य का पैगाम और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और संसार को सुंदर रूप देते चले जाएंगे, सामाजिक रूप में भी चारों तरफ मजबूतियां आती चली जाएंगी। इस कदर परोपकारी भक्तजन ये अपना ये एक जो रोल है इसको बाखूबी ये निभाते चले जाएंगे, और साथ ही दास अरदास करेगा कि दातार कृपा करे सबको तन मन धन के सुख भी प्रदान करे, ताकि बढ़ चढ़कर इस परमार्थ का भी पालन करते जाएं, कर्तव्य भी निभाते चले जाएं, परोपकार भी करते चले जाएं। सत्संग जी धन्य।